हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके मुसन्निफ आयतुल्लाह मिस्बाह यज़दी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 8, पेज नंबर 75 से। अगर कोई इस्लाम को कबूल करने के बाद कहे मैं इस्लामी अहकाम में अमल करने से आज़ाद हूँ, अगर चाहूँ अमल करूँ अगर चाहूँ अमल ना करूँ, ये इस हुकूमत की तरह है जो डेमोक्रेसिक और आज़ाद है, और वो लोग अपनी मर्ज़ी से इस हुकूमत के इंतखाब में शिरकत करते हैं और अपने वोटों के ज़रिए वज़ीर आज़म, रईस जमहूर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं। लेकिन जब यही हुकूमत कोई कानून बनाती है तो इस पर अमल करने से क्वेश्चन मार्क, और जब ये हुकूमत टैक्स लगाती है तो क्या कोई कह सकता है कि मैं नहीं दूंगा? असल हुकूमत और इसके वोट देने में आज़ाद थे, लिहाजा अब भी आज़ाद हैं कि इसके कानून पर अमल करें या अमल ना करें। इन बातों को कोई भी अक्लमंद कबूल नहीं कर सकता। जी हाँ, इस्लाम को कबूल करने में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम दिली एतिकाद का नाम है, और ताकत के ज़ोर पर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो इस वक्त इससे कहा जाएगा नमाज़ पढ़ो, और अगर कोई कहे कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, या अगर इससे कहा जाए कि ज़कात दो लेकिन ज़कात देने से इनकार करे, ये तो कोई भी इंसान इसको कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो इसके तमाम अहकाम को भी कबूल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इस्लाम तो कबूल कर ले लेकिन इसके अहकाम को कबूल ना करे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आमाल अंजाम दे। कोई भी हुकूमत इस बात को कबूल नहीं कर सकती कि इंसान इसको वोट दे लेकिन अमली मैदान में इस हुकूमत के कवानीन को कबूल ना करे। इज्तिमाई ज़िंदगी में बुनियादी तरीन असल वज़ाइफ और अहद व पैमान और वादा वफादाराना हो तो इज्तिमाई ज़िंदगी बिल्कुल ही वजूद नहीं पा सकती। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ और पैगंबर पर ईमान रखता हूँ लेकिन इस्लाम में अहकामात पर अमल नहीं करता और इसकी हाकमियत और विलायत को कबूल नहीं करता, तो ऐसे इस्लाम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस्लाम और पैगंबर को कबूल करना और अतात व पैरवी ना करने में ज़ाहरी तनाकुस पोशीदा है। हमारी गुफ्तगू से ये वाज़ह और रोशन हो चुका है कि अगर कोई इंसाफ की आँख से आयात को मुलाहिज़ा करे और इनकी दलालत लहन और माँ कबल व माँ बाद को गौर से देखे तो कुरान करीम में कोई तनाकुस नहीं मिलेगा, और मस्कूरा शुबे की अतात और आज़ादी में जो तनाकुस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद ने भी इसी को सही कहा है। लेकिन जिनके दिल मरीज़ हैं वो कुरान करीम को सदाकत और इंसाफ से नहीं देखते। अगर ये लोग कुरान का मुताला करते तो इस वजह से कि अपनी कच फिक्री और मुनहरिफ नज़रियात की दलाइल तलाश करें, और इस वजह से कि कुरान की आयात के बाद हिस्सों को इंतखाब करते हैं और सयाको सबाक पहली और बाद वाली आयतों को नहीं देखते और कुरान के मुताबिक महकुमात कुरान को छोड़ देते हैं और मुतशबिहात की पैरवी करते हुए नज़र आते हैं। तर्जुमा, बस जिन लोगों के दिल में कुजी है वो इन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबा हैं, ताकि फसाद बरपा करें और इस ख़्याल से कि इन्हें अपने मतलब पर ढाल लें, हालांकि खुदा और इन लोगों के सिवा जो इल्म में बड़े पाए पर फायज़ हैं इनका असली मतलब कोई नहीं जानता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 7। मुताशाबिहात की पैरवी के अलावा आयात को टुकड़े टुकड़े करते हैं और आयत के एक जुमले को अखज़ करते हैं और माँ कबलो माँ बाद को छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में इनको कुरान मजीद में तनाकुज़ नज़र आता है। जैसा कि मस्कूरा शुबे में इन लोगों ने आयात के माँ कबलो माँ बाद को छोड़ते हुए एतराज़ किया कि पैगंबरों की विलायत आज़ादी के मुखालिफ है। वो आयात की जिनमें रसूल इस्लाम के तसल्लुत का इनकार किया गया है, वो कुफार के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई थीं, जिनमें कहा गया है कि रसूल इनको ताकत के ज़ोरों पर इस्लाम कबूल ना करवाएं, यानी आ हज़रत कुफार पर तसल्लुत नहीं रखते। दर हकीकत इन आयात के मुताबिक अहकाम इलाही में अमल की आज़ादी इस्लाम लाने से पहले है, वरना तो इस्लाम कबूल करने वाले हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो पैगंबर और दूसरे इस्लामी अहकाम की पैरवी करें, और इसका वजीफ़ा है कि तमाम इस्लामी अहकाम की रियायत करें। इस्लामी और इलाही कवानीन की तौहीन, नेज दीन की तौहीन या तजाहिर बाफसक यानी खुले आम गुनाहों का मर्तकब होना करने वालों का शिद्दत से मुकाबला करती है। ये दर हकीकत जामे पर इस्लामी अहकाम की विलायत ही तो है कि जो इनको मौज़ुफ करती है कि ईमान और इस्लाम के तमाम लवाजमात पर मवीद हैं। वो इस्लाम है जो ख़ुद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है। नंबर 6, मस्कूरा शुबा गैर मजहबी तरीक़ा है। अब तक इस शुबे के जवाब में बहस की गई है जो कुरानी और दीनी लहजे में था, और ये शुबा इस शख्स की ज़बान से था जो ख़ुद मुसलमान और दीनदार कहलाता है और आयात कुरान को दलील बनाता हुआ ये नतीजा अखज़ करता है कि इस्लाम को इल्ज़ाम आवर फरमान नहीं देना चाहिए, यानी इस्लाम को लोगों की ज़िंदगी में दखालत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दखालत ख़ुद इस्लाम की कबूल करदा आज़ादी के ख़िलाफ़ है। इस वक्त इस एतराज़ के बारे में बहस करते हैं कि जो गैर मजहबी तौर पर किया जाता है। इस एतराज़ में शुबा करने वाले की ये फ़िक्र है कि इस्लाम के इल्ज़ाम आवर अहकाम और इसकी अतात व पैरवी को जो हर इंसानियत से नासाजगार और मुनाफी करार दे, अगरचा ये शुबा चंद तरीक़ों से किया गया है, हम यहाँ पर बाज़ तरीक़ों की तरफ इशारा करते हैं। मंतक की इस्तलाह में इख्तियार इंसान की फसल और मकूम है, और इसी से जो हर इंसानियत की वजूद पाता है। लिहाजा अगर हम इंसान से इख्तियार और इसकी आज़ादी को सलब कर लें और इसको मजबूर करें, तो गोया हम इस इंसानियत को सलब कर रहे हैं और गोया इसको एक हैवान की मानिंद करार दे रहे हैं और इसकी गर्दन में लगाम डालकर इधर उधर खींच रहे हैं। लिहाजा इंसान की अहमियत इस चीज़ का तकाजा करती है कि इसको हक इंतखाब दें, और इसका नतीजा ये होगा कि दीन इसके लिए इल्ज़ाम आवर अहकाम बयान ना करे, और अगर इसको पैगंबर आयमा और नायबीन आयमा की अतात के लिए मजबूर करे, तो इस सूरत में इंसानियत का एहतराम और इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, और गोया हम इसको हैवान की तरह करार देकर इधर उधर ले जा रहे हैं। नंबर 7, ह्यूम के एतराज़ात और इनके जवाबात। अव्वल, हम मस्कूरा एतराज़ के दो जवाब पेश करेंगे, और चूँकि मोतरस का एतराज़ ह्यूम के एतराज़ की तरह है, ह्यूम का एतराज़ ये है कि अकल नज़री है को दर्क करती है और अकल अमली फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए और फ़लाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए को दर्क करती है, और चूँकि अकल नज़री का अकल अमली से कोई रब्त नहीं है, लिहाजा अकल अमली की दर्क शुदा चीज़ों को अकल नज़री की बुनियाद करार नहीं दी जा सकती। ह्यूम का एतराज़ मगरबी फ़लासफ़ा की काबिल तवज्जो करार पाया और उन्होंने इसको बहुत सी इल्मी चीज़ों की बुनियाद करार दिया। जमहूरी इस्लामी ईरान के इनकलाब के बाद बहुत से मगरबी दानिशमंदों ने ये एतराज़ किया कि हम अस्तहा से बदयहा का नतीजा नहीं निकाल सकते। मसलन अगर कोई शख्स एक ख़ास सिफ्त रखता है, तो इसका नतीजा ये नहीं लिया जा सकता कि इस तरह होना चाहिए या ना होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अस्तहा की दर्क करने वाली अकल नजरी है और बायदहा को दर्क करने वाली अकल अमली है, जबकि इन दोनों में कोई रब्त नहीं है। ह्यूम के इस एतराज़ को मानने वाले ये कहते हैं, लोगों को किसी काम पर मजबूर करना इनकी इंसानियत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा दीन को इल्ज़ाम आवर अहकामात पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान मुख्तार और आज़ाद है। पहले ये कहते हैं कि इंसान मुख्तार है, लिहाजा इसको आज़ाद रहना चाहिए और इसको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए इस बिना पर इंसान के मुख्तार होने से कि जो अस्तहा में से है और जिसको अकल नजरी दर्क करती है, बा यदो नबाइत के जिसको अकल अमली दर्क करती है का नतीजा लेते हैं। और इनकी बुनियाद यही तनाकुज है कि जिसको वो खुद कबूल करते हैं कि अस्तहा के जरी बा यदा का नतीजा निकले। अलबत्ता हमारा अकीदा ये है कि अगर अस्तहा किसी चीज़ की इल्लत तामा हो तो इस वक्त इसका नतीजा बा यदहा लिया जा सकता है, लेकिन ये नतीजा हमारी बहस में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंसान का मुख्तार होना इसके मकलफ होने के इल्लत तामा नहीं है, बल्कि अख्तियार तकलीफ के लिए राह हमवार करता है। और किसी काम पर तकलीफ और इस पर मजबूर करना या किसी काम से रोकना किसी खास मसलहत या मुफसदा की वजह से होता है जिसके ज़मन में काम होता ही है, लिहाजा किसी काम पर मजबूर करने में इसकी मसलहत छुपी होती है और किसी काम से रोकने में इसका ज़रर और नुकसान पोशीदा होता है। नंबर 8, दूसरा जवाब, आज़ादी मुतलक और लामहदूद नहीं है। अगर हम इस शुबे को मान भी लें और कहें कि चूँकि इंसान मुख्तार है लिहाजा इसको किसी काम पर मजबूर नहीं किया जा सकता और कोई भी हुकूमत इंसान के लिए इल्ज़ामी अहकाम नाफिज नहीं कर सकती क्योंकि इंसान आज़ाद है, जिस तरह चाहे अमल करे और आज़ादी का सलब करना है, और आज़ादी का सलब करना या इंसानियत का सलब करना लिहाजा कोई भी कानून काबिल एतबार नहीं है, और जंगली राज और असर व हर्ज को कबूल कर लें। लेकिन हम ये अर्ज़ करेंगे कि किस चीज़ के इल्ज़ाम इजबार ही के ज़रिए कानून कानून हो सकता है। कानून इस वक्त कानून होगा कि जब अपने हमरा इल्ज़ाम और इजबार लिए हो, कोई भी महकमा हो जब इसके कानून और दस्तूरुल अमल को कबूल कर लिया जाए तो इसको हर हाल में अमल करना ही होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून तो कबूल कर ले लेकिन अगर वो कानून इसके नुकसान का बाइस हो तो इस पर अमल ना करे और अपने नफ़ा नुकसान के बारे में सोचे। इस तरह तो वो निज़ाम महकमा चल ही नहीं पाएगा और इस महकमे का दिवालिया निकल जाएगा। जब तक कानून कानून बनाने वाले की नज़र में मुकीद है, सब लोग इसकी अतात करें, यहाँ तक कि अगर इस कानून में कोई खामी हो तो इसकी तलाफ़ी करना कानून गुजार की ज़िम्मेदारी है, और दूसरों को कानून में खामी का बहाना बनाकर और इस पर अमल करने से फरार करने का कोई हक नहीं है। नंबर 9, हाकमियत और इंसान के खलीफतुल्ला अजमत के दरमियान तारुस। एक दूसरा शुबा ये कहा जाता है कि इंसान कुरान के मुताबिक खलीफतुल्ला है। इसके मायने ये हैं कि इंसान रोए ज़मीन पर खुदा का जानशीन है और खुदा की तरह अमल करता है। जिस तरह खुदा ने इस दुनिया को खल्क फरमाया है, इस तरह इंसान भी बहुत सी चीज़ों को पैदा करे, और जिस तरह खुदावंद आलम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता है तो इंसान भी जिसके इख्तियार में ज़मीन है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करे। इस एतराज़ का जवाब ये है कि पहले खिलाफत इलाही के मायने सही तरह से समझ लिए जाएं और तवज्जो रहे कि जिस मायने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहा गया है, खुदावंद आलम इस सिलसिले में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, याद कीजिए इस वक्त को जब आपके परवरदिगार ने मलाइका से कहा, मैं रुए ज़मीन पर जानशीन यानी नुमाइंदा बनाने वाला हूँ, तो इस वक्त फरिश्तों ने कहा, क्या तू ऐसे को खलीफा और जानशीन बनाएगा जो ज़मीन पर खून रेजी और फसाद बरपा करे, हम तेरी तस्बीह तहलील करते हैं। तब इस वक्त खुदावंद आलम ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 30। ये मकाम तमाम औलाद आदम के लिए नहीं है, क्योंकि कुरान बास औलाद आदम को शैतान कहता है। इरशाद होता है, तर्जुमा, और ऐ रसूल, जिस तरह ये कुफार तुम्हारे दुश्मन हैं, इसी तरह गोया हमने खुद आजमाइश के लिए शरीर आदमियों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इन अपराध में नहीं है कि जिसको मलाइका सजदा करते। इस मौके पर खुदा वंदे आलम इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और ऐ रसूल वो वक्त याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक आदमी को खमीर दी हुई मिट्टी से जो सूख कर कहन कहन बोलने लगे पैदा करने वाला हूँ, तो जिस वक्त मैं इसको हर तरह से दुरुस्त कर चुकूँ और इसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ तो सबके सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। सूरह हुजुर आयात 28-29। खलीफातुल्लाह होना बहुत से अहम शराइत रखता है, जिनमें से कुछ शराइत मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, इस्मा का इल्म। तर्जुमा, और आदम की हकीकत जाहिर करने की गर्ज से आदम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। सूरह बकरा आयत नंबर 31। नंबर 2, अल्लाह का खलीफा रोए ज़मीन पर अदालत व इंसाफ को जारी करने की सलाहियत रखता हो, लिहाजा वो इंसान जिसकी आदत कत्लो अगारत और खून रेजी हो और कोई जुल्म भी करने से ना घबराता हो, वो खलीफा तुल्ला नहीं हो सकता। माज़ अल्लाह, क्या खुदावंद आलम जालिम है कि इसका खलीफा और जानशीन भी जालिम हो। अल्लाह का खलीफा वो है जो अपनी फर्दी और इज्तिमाई ज़िंदगी में खुदाई हिफाजत का इजहार करे, ना ये कि जो दो पैरों से इंसानी शक्ल में चलता हो वो खलीफातुल्लाह है। लिहाजा वो अफराद जो लोगों को गुमराह करने और हुकूमत इस्लामी को दरहम उबरहम करने में लगा हो वो अफराद ना ये कि अशरफुल मखलूकात नहीं हैं, बल्कि इंसानी शक्ल में शैतान हैं, जिनको खुदावंद आलम हैवानों से भी बदतर कहता है। इन लोगों के बारे में इरशाद होता है, तर्जुमा, इसमें शक नहीं कि ज़मीन पर चलने वाले तमाम हैवानात से बदतर खुदा के नज़दीक वो भरे गूंगे यानी कुफार हैं जो कुछ नहीं समझते। सूरह अनफाल आयत नंबर 22। मोतरिस कहता है कि इंसान की अजमत व बुजुर्गी इसके किरदार से है, और जो चीज़ें इंसान की आज़ादी में माना हो वो काबिले कबूल नहीं है। ये एक धोखे वाला नारा है जो मगरब ज़मीन में लगाया जाता है और दूसरे मुल्कों में भी उसे कबूल किया जाता है, जबकि इसके लवाजमात और असरात पर तवज्जो नहीं की जाती और नारे पर पाफिशारी की जाती है। बेशक इस नारे के जवाब में कि जिसमें बहुत से अगराज व मकासद पोशीदा हैं, एक तफसीली बहस की ज़रूरत है और इंशाल्लाह बाद में इस सिलसिले में बहस की जाएगी, लेकिन इस वक्त इजमाली तौर पर ये सवाल करते हैं कि इंसान के मुतलक तौर पर आज़ाद होने का मकसद क्या है और किसी महदूदियत के कायल ना होने से आपकी मुराद क्या है। क्या आपका मकसद ये है कि इंसान के लिए कोई भी कानून ज़रूरी नहीं है? इसको तो कोई भी आकल इंसान कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंसान हर काम में आज़ाद है, और जो आज़ाद है वो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी की इज्जत भी लूट सकता है, लोगों में बदअमनी भी फैला सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे नुकसान या ज़रर खुद इस नज़रिया रखने वाले को भी पहुंच सकता है, और क्या ऐसी आज़ादी रखने वालों के दरमियान ज़िंदगी बसर की जा सकती है? लिहाजा नतीजा ये निकला कि इंसान की आज़ादी नामहदूद नहीं है, और इंसान ऐसा आज़ाद नहीं कि जो भी चाहे उसे अंजाम दे। अब जबकि रोशन हो चुका है कि आज़ादी महदूद और मशरूत है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी की हदूद कौन मुअय्यन करे और आज़ादी की हद कहाँ तक है। और अगर तय ये हो कि हर इंसान आज़ादी की हद को मुअय्यन करे, तो इसका नतीजा भी आपके सामने है कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी से अमल करे, और यहाँ पर ये एतराज़ होता है कि जो मुतलक आज़ादी पर होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि आज़ादी की हद को मुअय्यन करने के लिए एक कानूनी मर्जा होना चाहिए। इस सूरत में अगर कोई कबूल करता है कि खुदा है और इंसान के लिए नफ़ा नुकसान को खुद इससे बेहतर जानता है, और इंसान की ज़िंदगी से खुदा को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, और वो तो सिर्फ़ अपने बंदों की भलाई चाहता है, तो ऐसे शख्स के लिए आज़ादी की हद को बयान करने के लिए खुदा के अलावा दूसरा कौन हो सकता है। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के एतिकादी और फिक्री मसाइल में कोई तनाकुज़ नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस खुदा को मानते हैं कि जो इंसान के लिए नफ़ा व नुकसान को खुद इससे बेहतर जानता है और बेहतर तौर पर जानता है कि इंसान की भलाई किस चीज़ में है। लिहाजा वो इस आज़ादी की हद को बयान करे, लेकिन अगर कोई खुदा पर ईमान ना रखता हो, या अगर खुदा पर ईमान तो हो लेकिन इसको आज़ादी की हद मुअय्यन करने वाला ना माने और ये कहे कि इंसान खुद आज़ादी की हद को मुअय्यन कर सकता है, तो ऐसी सूरत में हज़ारों मुसीबतों में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि तमाम इंसान एक नज़रिए पर मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे। और अगर अक्सरियत ने आज़ादी की हद को मुअय्यन किया और अक़लियत ने इसको कबूल ना किया, वो किस तरह अपने हुकूक तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि अगरचे आज़ादी एक खूबसूरत और दिल पज़ीर लफ्ज़ है, लेकिन मुतलक और लामहदूद नहीं है और कोई भी मुतलक आज़ादी को कबूल नहीं कर सकता। छठी नशस्त, पेज नंबर 82। इस्लाम में आज़ादी, दूसरा हिस्सा। नंबर वन, तारीख़। इंसान में तहवील और तहूल की बिना पर एक शुबा। ये शुबा इंसानी तारीख, तमद्दुन और कल्चर के तहूल व तबद्दुल नेज इज्तमाई निज़ाम में तगैर व तब्दीली की बिना पर होता है, और ये तयशुदा बात है कि इंसानी इज्तमाई ज़िंदगी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरी है, और एक ज़माने में ग़ुलामी का मसला राइज था और इंसान की तरक्की इसी में समझी जाती थी कि कमज़ोर और नातवान लोग दूसरों की ग़ुलामी करें और इनकी हर मुमकिन खदमत गुजारी करते रहें। जाहिर सी बात है कि इस ज़माने में इंसान और खुदा जैसा ग़ुलाम और आका के दरमियान होता था, क्योंकि इस ज़माने में ये राइज था कि बास ताकतवर लोग मौला और आका और बास कमज़ोर लोग इनके बंदे और ग़ुलाम बन कर रहें, और इंसानों के दरमियान रबता भी उबद और आका के लिहाज से समझा जाता था। इस बिना पर जिस तरह ज़यीफ़ और कमज़ोर लोग उबद और बंदे और जलील व पस्त समझे जाते थे, इस तरह लोग खुदा के उबद और बंदे समझे जाते थे, और खुदा वंदान का मौला आका आज जब बंदगी और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इस वक्त का कयास और मैार इस ज़माने में नहीं लाना चाहिए। आज इंसान किसी भी ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करता और अपने को आका समझता है, ना कि बंदा। लिहाजा हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बंदा हैं और खुदा मौला, आज हम खुद को अल्लाह का खलीफा माने, और जो खुदा का जानशीन हो इसको बंदगी का एहसास कैसा, गोया खुदावंद आलम से खुदाई ख़त्म हो चुकी और ये हजरत इसकी मुस्तनद पर बैठे हुए हैं, और जो चाहें करें। जिस तरह कोई हाकिम किसी को अपना कायम मकाम बनाए तो वो इसके तमाम इख्तियारात का मालिक बन जाता है और इसके काम के काम होते हैं, और इनके दरमियान हाकिम और फरमा बरदार का राबता नहीं है और कायम मकाम के कामों की कोई बास पुरस नहीं होना चाहिए। इस ज़माने में जबकि मॉडर्न और जदीद तमद्दुन का दौर दौरा है और हमारी ज़िंदगी एक बुलंद मर्तबे पर पहुंच चुकी है, तो हम बंदगी और ग़ुलामी की ज़िंदगी के अहकाम अतात व फरमा बरदारी को कबूल नहीं कर सकते और आका व मौला के पीछे पीछे घूमते रहें। तकलीफ़ और अतात का ज़माना पीछे रह गया है, और अगर कुरान में तकलीफ़ और दूसरे फरमान मौजूद हैं तो वो ग़ुलामी के ज़माने के हैं, क्योंकि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए ग़ुलामी का ज़माना था, और इस्लाम का पहला दौर खुदा और रसूल और लोगों के दरमियान रबते के लिए मुनासिब था। कभी ये कहा जाता है कि इंसान तकलीफ़ का तालिब नहीं है लेकिन हुकूक़ का तालिब है, और इसके जहन में कभी ये नहीं आता कि इस पर कोई फरीज़ा और ज़िम्मेदारी है ताकि इनको अंजाम दे सके। इंसान को चाहिए कि वो खुदा और दूसरों से अपने हुकूक़ को हासिल करे। खुलासा ये कि जो लोग पैगंबर, आयमा और इनके जानशीनों की अतात का दम भरते हैं, ये 14 सदी पहले किसी इज्तिमाई ज़िंदगी का था, जबकि आज की इज्तिमाई ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी की कोई बात नहीं करता, बल्कि इंसानी हकूक़ की बातें होती हैं। इंसान को ये समझाना ज़रूरी है कि तुझे ये हक है कि जिस तरह भी चाहे ज़िंदगी बसर करे, तुझे अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने का हक है और जिस तरह भी चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी को बसर करे। नंबर टू, हमारा जवाब। हम मस्कुरा एतराज़ का जवाब तकवीनी और तशरीही लिहाज से पेश करते हैं क्योंकि हमारे सामने दो मकाम हैं, तकवीनी मकाम, तशरीही मकाम, बा इबारत दीगर मकाम वाकियत और हस्त हा यानी है, और दूसरे मकाम तकलीफ़ बा यदहा यानी होना चाहिए यानी आलम वाकियात और आलम अर्ज शाह यानी कीमत और अहमियत। अगरचे मस्कुरा अल्फाज के एक ही मायने हैं, अलबत्ता मुख्तलिफ लोगों को समझाने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि तकवीनी लिहाज से हमारी खुदा से क्या नस्बत है, क्योंकि अगर कोई खुदा को मानता ही ना हो तो इसकी नज़र में खुदा से कोई नस्बत बेफायदा है। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा पर एतकाद रखता हो या कम से कम ये कबूल करता हो कि इसका पैदा किया हुआ है और खुदा की खालकियत को कबूल करता है, खुदा को मानने का ये सबसे कम दर्जा है, और अपने को खुदा की मखलूक जानता हो, अलबत्ता खुदा की खालकियत पर एतकाद रखने से इंसान मोहद खुदा को एक मानने वाला नहीं बनता, लिहाजा खुदा की तकवीनी और तशरीही रबूबियत का कायल होना ज़रूरी है। तौहीद दर खालकियत की बिना पर किसी का ये कहना कि वो खुदा का बंदा और इसका ममलूक नहीं है, खुद इसके खुदावंद आलम की खालकियत के एतकाद से टकराता है। तौहीद का पहला कदम अपने को खुदा की मखलूक तस्लीम करना है, और हमारा वजूद खुदा का अता करदा है, और यही वो अबूदियत है, उबत यानी ममलूक, दूसरे की मिल्कियत होना। लिहाजा अगर कोई अपने को मुसलमान और खुदा का मुअतकद कहलाता है लेकिन अपने को खुदा की अबूदियत और ममलूकियत नहीं मानता, गोया इसकी गुफ्तगू में वाज़ा तनाकुज़ है। क्योंकि खुदा पर एतकाद होने का लाजमा ये है कि हम खुद को इसकी मखलूक, उबत और ममलूक समझें। इस वजह से तमाम मुसलमान अपनी बेहतरीन इबादत नमाज में कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये बात मुसल्लम है कि इंसान के लिए सब बेहतरीन अजमत और मकाम खुदा का बंदा होना है। इस वजह से खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, वो खुदा हर ऐब से पाक व पाकीज़ा है जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा आसमानी मस्जिद तक की सैर कराई। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। जी हाँ, खुदा की बंदगी और इसकी अबूदियत की अहमियत के पेश नज़र कुरान में इस खूबसूरत लफ्ज़ उबद और इसके दूसरे मुशतकात को इस्तेमाल किया गया है, और इंसान के लिए बेहतरीन और बुलंद दर्जे को अबूदियत शुमार किया गया है। तर्जुमा, और कुछ लोगों से कहेगा ऐ इत्मीनान पाने वाली जान अपने परवरदिगार की तरफ पलट आ, तू इससे खुश है, वो तुझसे राज़ी है, तू मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा। सूरह फजर आयत नंबर 27-29। तशरीही लिहाज से दूसरा जवाब। दूसरा जवाब तशरीही लिहाज से ये है कि इंसान का आज़ाद होना और कानून जिम्मेदारी कबूल करना आपस में साजगार नहीं है, कि जिसका नतीजा वहशत, जुल्म और बर्बरियत और असरो हर्ज है, और ये नतीजा निकालना कि इंसान आज़ाद है, जिस तरह चाहे अमल कर सकता है, अगर जिसने इस कानून को वोट दिया हो लेकिन इस पर अमल करने से इनकार करे, ऐसा तो जंगल में भी नहीं होता क्योंकि वहाँ भी हैवानों के अमल करने के लिए ख़ास कवानीन होते हैं। लिहाजा जब हम तमतुन और मदनियत का दम भरते हैं तो हमें कबूल करना पड़ेगा कि मदनियत का सबसे पहला रुकन ये है कि इंसान कवानीन पर अमल करने का ज़िम्मेदार है, और ज़िम्मेदारी और मसूलियत को कबूल ना करने से ना सिर्फ ये कि तमद्दुन जदीद का अदा नहीं किया जा सकता बल्कि अपने को वहशीगरी की सबसे नीची खाई में गलता पाएंगे। दूसरे अल्फाज में यूं बयान किया जाए कि इंसान की फसल मकूम अकल है, और अकल का हुक्म ये है कि इंसान ज़िम्मेदारी को कबूल करे और खुदा अमूर को अंजाम देने का मतलब समझे और बाज़ चीज़ों से परहेज़ करे। लिहाजा अगर कोई महल्ला और सड़क पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहने या लोगों के सामने बरहना आए और जो भी मुंह में आए वो कहता फिरे, तो इस सूरत में क्या कोई इसको आकिल तसव्वुर कर सकता है या इसको वहशी और दीवाना कहा जाएगा। और अगर कोई इससे सवाल करे कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो, अब अगर इसके जवाब में कहे कि मैं चूंकि आज़ाद हूँ और आज़ादी मक़ूम इंसान हूँ, लिहाजा मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहूँ करूँ, तो क्या कोई इंसान इसकी इन बातों को कबूल कर सकता है? लिहाजा चूंकि इंसान की फसल मक़ूम अकल है और इसका अकली लाजमा ये है कि इंसानी जिम्मेदारी और कानून को कबूल करे, क्योंकि अगर कानून ना हो तो मदनियत नहीं हो सकती, और अगर मसूलियत और जिम्मेदारी ना हो तो इंसानियत भी नहीं आ सकती। इंसान के आज़ाद होने का मतलब ये है कि इंसान तकवीनन इंतखाब की कुदरत रखता है, ना कि शरियन कानून और इल्ज़ाम आवर और इम्कानात को कबूल ना करे, और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में किसी हद हदूद का कायल ना हो। बस नतीजा ये निकला कि इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि दीन की विलायत आज़ादी के मुखालिफ है, क्योंकि इंसान की फसल मक़ूम आज़ादी है, जिससे इंसान का खुदा का जानशीन होना लाजिम आता है। यहाँ इस किताब का ये पार्ट ख़त्म हुआ। अगले हिस्से में नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे।